ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आत्मदाह करने वाले गणेश नेपाली की मृत्यु मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। सरकार और अपनी नियत पर संदेह न करने का गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने सांसदों से किया आग्रह। ऊर्जा क्षेत्र नेपाल के आर्थिक रूपांतरण और हरित विकास का महत्वपूर्ण आधार है, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का कथन। बिना अनुमति विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करने वालों पर कार्रवाई करने की शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय की चेतावनी। और स्पेन में आग लगने से कम 12 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में 3 अलग अलग निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन पेश किए गए। बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम ने निर्वाचन आयोग का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन 2081-82, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन 2081-82 और राष्ट्रीय महिला आयोग का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन 2081-82 सदन के समक्ष पेश किए। इसी बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की ओर से मंत्री सुविता गौतम द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय सेवा दल विधेयक 2083 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इससे पहले बैठक में समय लेकर बोलते हुए गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने कहा कि आत्मदाह के प्रयास के बाद निधन हुए मुगु के गणेश नेपाली के इलाज और जीवन बचाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। गृहमंत्री गुरुंग ने बताया कि नेपाली को इलाज के लिए भारत भेजने का काफी प्रयास किया गया था, लेकिन चिकित्सकों ने यात्रा के दौरान उनकी स्वास्थ्य स्थिति और जटिल होने की संभावना जताई, जिसके बाद यह निर्णय रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि 3 तह वाली सरकारों में से 2 तहों की सरकार विपक्षी दलों के नेतृत्व में है। उन्होंने किसी नागरिक की मृत्यु को राजनीतिक मुद्दा न बनाने का विपक्षी दलों से आग्रह किया। गृहमंत्री गुरुंग ने सदन को जानकारी दी कि गणेश नेपाली की मृत्यु मामले की जांच के लिए डीआईजी गोविंद थपलिया के नेतृत्व में 5 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है और 3 नगर पुलिसकर्मियों को नियंत्रण में लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने कानूनी प्रावधानों के कारण जेएनजी आंदोलन द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों और जनता की कई अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सका है, लेकिन सरकार और अपनी नियत पर संदेह नहीं करने का आग्रह भी किया। गृहमंत्री गुरुंग समय लेकर संसद के रोस्ट्रम पर पहुंचे थे। शुरुआत में कुछ समय तक भावुक होकर वे बिना बोले ही वापस लौट गए। बैठक के शून्य समय में सांसदों ने किसानों को समय पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने, बार बार होने वाली विद्युत आपूर्ति बाधा का समाधान करने और मादक पदार्थ नियंत्रण पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आज की बैठक की शुरुआत में भी विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह द्वारा सीमा संबंधी दिए गए बयान को सुधारने और उसे संसद की कार्यवाही से हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल द्वारा समय दिए जाने के बाद नेपाली कांग्रेस की सांसद वासना थापा ने सीमा संबंधी प्रधानमंत्री के बयान को सुधारने की मांग की। सांसद थापा ने आरोप लगाया कि राज्य के दबाव के कारण एक युवा ने अपने शरीर में आग लगा ली, लेकिन राज्य मूक दर्शक बना रहा। उन्होंने सवाल किया कि एम्बुलेंस तक भेजने के बजाय पुलिस प्रशासन के माध्यम से अस्पताल पहुंचाना वास्तव में बचाव था या गिरफ्तारी। इसी तरह नेकपा एमाले की सांसद भूमिका लिंबू सुब्बा ने भी प्रधानमंत्री के बयान को सुधारने की मांग की। उन्होंने सुस्ता क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बल के प्रवेश और दारचूला में भारतीय सैन्य विमान द्वारा बिना अनुमति नेपाली हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के विषय में भारत को कूटनीतिक नोट भेजा गया या नहीं, इस बारे में सदन को जानकारी देने की मांग की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आषाढ़ 30 कृति मंगलवार सुबह 11 बजे आयोजित होगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों के साथ प्रश्नोत्तर में भाग लेते हुए कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा कि जलवायु नीति में महिलाओं, आदिवासी जनजातियों, मधेशी, दलित उत्पीड़ित समुदाय, दिव्यांग व्यक्तियों और युवाओं की समान भागीदारी तथा न्यायपूर्ण अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। मंत्री चौधरी ने बताया कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं तथा वंचित वर्गों की सार्थक भागीदारी को नीति में शामिल किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रीय अनुकूलन योजना में भी लैंगिक भागीदारी और समावेशिता से जुड़े कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसी तरह महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक और सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी ने बताया कि सरकार गरिमापूर्ण मासिक धर्म प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम संचालित करने जा रही है। सांसदों के साथ प्रश्नोत्तर में भाग लेते हुए मंत्री वादी ने कहा कि महिलाओं और किशोरियों के साथ मासिक धर्म के दौरान होने वाले छुआछूत को समाप्त करने के लिए सरकार समयानुकूल कानूनी व्यवस्था भी करने जा रही है। इसी प्रकार राष्ट्रीय समावेशी आयोग की आर्थिक वर्ष 2081-82 की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा हुई। उसमें उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम ने कहा कि संवैधानिक आयोग कार्यपालिका से अलग होते हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही संसद और संसदीय समितियों के प्रति होनी चाहिए। मंत्री गौतम ने स्पष्ट किया कि सरकार संवैधानिक आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले बैठक के आकस्मिक और शून्य समय में सांसदों ने त्रिपुरेश्वर में आत्मदाह के प्रयास के बाद इलाज के दौरान निधन हुए मुगु के गणेश नेपाली मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग सरकार से की। सांसदों ने काठमांडू महानगर पुलिस द्वारा पठाओ राइडर गणेश नेपाली की मोटरसाइकिल का व्हील लॉक किए जाने के कारण उत्पन्न घटना की वास्तविक जानकारी सदन को देने की मांग भी की। सांसदों ने सरकार के मनमाने दंडात्मक रवैये के कारण नेपाली नागरिक दबाव में आकर आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं और सरकार गरीबों के खिलाफ खड़ी दिखाई देने का आरोप लगाया। बैठक में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण संबंधी पत्र का विवरण सदन को जानकारी कराई। इसी तरह प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम ने राष्ट्रीय दलित आयोग की आर्थिक वर्ष 2081-82 की वार्षिक प्रतिवेदन सदन में पेश किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आगामी आषाढ़ 31 कते बुधवार दोपहर 1:15 पर आयोजित होगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एमाले ने आत्मदाह प्रयास में बुरी तरह घायल होने से हुई मृत्यु की घटना को विडंबनापूर्ण बताया है। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल द्वारा आज जारी किए गए बयान में इस बात का उल्लेख है। बयान में कहा गया है कि आधारभूत वर्ग की जनता को संरक्षण देने के दायित्व वाला राज्य खुद ही कमजोर जनता का निवाला और झोपड़ी छीनने को उद्यत है। बयान में मृतक गणेश नेपाली के प्रति भावपूर्ण श्रद्धा और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। साथ ही घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को उचित क्षतिपूर्ति देने की सरकार से मांग की गई है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र नेपाल के आर्थिक रूपांतरण, रोजगार सृजन, औद्योगिकीकरण और हरित विकास का महत्वपूर्ण आधार है। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों के संगठन इप्पान के पदाधिकारियों के साथ आज सिंह दरबार में हुई बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि नेपाल के निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने में भी ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल में ऊर्जा उत्पादन और प्रवर्धन के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं, अवसरों और चुनौतियों के संबंध में इप्पान द्वारा उठाए गए मुद्दों को सरकार गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री शाह ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और संबंधित निकायों के साथ समन्वय कर आवश्यक सहजीकरण और समाधान के लिए आगे बढ़ने का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार बैठक में ऊर्जा क्षेत्र, जल विद्युत विकास, ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश और पर्यावरण, उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन तथा इसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था के विकास जैसे विषयों पर चर्चा और संवाद हुआ। बैठक में इप्पान की ओर से बिजली खरीद समझौता पीपीए को आसान बनाने, रुकी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, प्रसारण लाइन और ग्रिड एक्सेस की समस्या समाधान, वन एवं पर्यावरण तथा भूमि प्राप्ति प्रक्रिया को सरल बनाने, लाइसेंस नवीकरण में सहजीकरण और विद्युत व्यापार में निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय ने ए लेवल, सीबीएसई, आईबीडीपी सहित विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमों को मंत्रालय की अनुमति के बिना संचालित करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ संस्थान बिना अनुमति ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं, इसलिए कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। साथ ही बिना अनुमति विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों की जानकारी मिलने पर 3 दिनों के भीतर लिखित सूचना मंत्रालय को देने की अपील की गई है। मंत्रालय के अनुसार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विदेशी संबद्धता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभावी नियमन के लिए नई नियमावली लागू की गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल से संयुक्त अरब अमीरात यूएई के विदेश व्यापार मंत्री थानी अहमद अल जयूदी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में आज हुई इस मुलाकात के दौरान नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों, आपसी हित और विभिन्न साझा मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने गोरखा पत्र संस्थान और सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था को लंबित वार्षिक लेखा परीक्षण इस वर्ष पूस महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि समय पर लेखा परीक्षण न होने से वित्तीय अनुशासन, सेवा वितरण और बजट क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। मंत्री ने सार्वजनिक संचार संस्थानों को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए लेखा परीक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि गोरखापत्र संस्थान का साल 2079-80 से लेखा परीक्षण लंबित होने के कारण उसे सरकारी अनुदान और अन्य बजटीय राशि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। वहीं राष्ट्रीय समाचार समिति ने नियमित रूप से लेखा परीक्षण होने की जानकारी दी। मंत्री ने स्थानीय संवाददाताओं की नियुक्ति भी खुली, पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया से करने के निर्देश दिए। सार्वजनिक लेखा समिति की बैठक ने बेरुजू यानी वित्तीय अनियमितता के अध्ययन के लिए गठित 5 उपसमितियों के नेतृत्व का चयन किया है। समिति की आज हुई बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 3 उपसमितियों का नेतृत्व देने, जबकि एमाले और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को बाकी 2 उपसमितियों का नेतृत्व सौंपने की सहमति बनी। बैठक में समिति के सभापति भरत बहादुर खड़का ने बताया कि वर्तमान में लगभग 7 खरब 55 अरब रुपए बराबर का बेरुजू मौजूद है और इसके प्रबंधन के लिए आर्थिक अनुशासन तथा नीतिगत सुधार आवश्यक हैं। सभापति खड़का ने कहा कि समिति को 1 वर्ष की अवधि में कितनी बेरुजू राशि निपटारा करने में सफलता मिली, इसका मूल्यांकन कर वित्तीय सुशासन को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्पेन के दक्षिण पूर्वी प्रांत अल्मेरिया के लॉस गायारदोस इलाके में लगी जंगल की आग में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में 6 लोग घायल भी हुए हैं। कुछ मृतक उन वाहनों के अंदर मिले जिन्हें आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग बिजली की गिरी हुई लाइन की वजह से लगी और देखते ही देखते पास के जंगलों में फैल गई। हालांकि अधिकारियों ने अब तक आग लगने की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। करीब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली लगातार चल रही हीट वेव के कारण दक्षिणी यूरोप के कई हिस्सों में जंगल की आग भड़क रही है। फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन में सैकड़ों दमकलकर्मी आग की बड़ी घटनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अंदालुदिया के क्षेत्रीय प्रमुख ने इस घटना को त्रासदी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जारी संदेश में कहा, हमारे दिल भारी हैं और हम गहरे दुख में हैं। आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक आग की वजह से कई सड़कें बंद करनी पड़ी और करीब 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मदाह करने वाले गणेश नेपाली की मृत्यु मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों की समिति गठित। सरकार और अपनी नियत पर संदेह न करने का गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने सांसदों से किया आग्रह। ऊर्जा क्षेत्र नेपाल के आर्थिक रूपांतरण और हरित विकास का महत्वपूर्ण आधार है, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का कथन। बिना अनुमति विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करने वालों पर कार्रवाई करने की शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय की चेतावनी और स्पेन में आग लगने से कम 12 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।